أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس وقت کا بہترین استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے چلتے ہیں سورۃ الاسر کا ڈے ٹو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سورۃ الاسر قرآن پاک کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت لیکن جامع ترین جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا اور الاسر نام جو ہے صورت کا اس کو ہم نے پیچھے دیکھا کہ کیسے نچوڑ ہے جیسے آپ 10-12 کینو نچوڑے تو ایک گلاس جوس بنتا ہے بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ول وقت نہیں کہا ول دہر نہیں کہا اور اسی طرح وقت کے جو ہم نے دوسرے مترادفات پچھلی کلاس میں دیکھے وہ نہیں کہے بلکہ ول عصر کہہ کر انسان کو اس کی زندگی کے تمام ہونے کا اس کے نچڑنے کا یقین دلایا اور ہم اس صورت میں انشاء اللہ تعالیٰ جو اینڈ تک پہنچتے ہوئے چار چیزیں دیکھیں گے الایمان العمل الدعوہ اور الصبر انشاء اللہ آج کی اس نشست میں ہمارا ٹاپک الاسر سے شروع ہوتے ہوئے الایمان اور العمل تک ہوگا اور پھر تیسرا جو آخری اس کا ہمارا دن ہے وہ الدعوہ اور الصبر ہے آپ سب میرے ساتھ ایک دفعہ اس کا لفظی ترجمہ دہرا لیجئے پورے شعور کے ساتھ اس کے الفاظ پہ غور کرتے ہوئے تاکہ ہم سب جو لفظ بھی بولیں کہیں وہ ہمارے دل کی پکار بن جائے ریڈی آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر زمانے کی قسم ان بے شک الانسان انسان لفی البتہ میں یعنی یقیناً خسر خسارے میں اب دونوں کو اکٹھا کریں گے لفی خسر یقیناً خسارے میں ہے اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے جو آمنو ایمان لائے وعملو اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک و اور تواصو ایک دوسرے کو تلقین کی بالحق حق کی و اور تواصو ایک دوسرے کو تلقین کی بالصبر صبر کی چلیے اس کا بامحاورہ ترجمہ سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے انسان کی جگہ اپنا نام لکھئے بالکل یہ صورت ڈائریکٹ آپ کے اوپر فٹ ہوتی ہے اس کا پورا نیویگیٹر آپ کے میرے اوپر ہے پورا اس کا فوکس میرے آپ کے اوپر ہے اور اپنا نام لے کر کہیے عفت در حقیقت بڑے خسارے میں ہے بشرا در حقیقت بڑے خسارے میں ہے آصفہ در حقیقت خسارے میں ہے ہمیں سے ہر ایک اپنا نام لے کر اس کو پڑے گا نا تو دل پہ ہاتھ پڑے گا کھچ پڑے گی بیٹھے بیٹھے یہاں کوئی کہہ دے نا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کی گاڑی چلی گئی آپ کے گھر کو آگ لگ گئی خدا نخواستہ کوئی اپنا پیارا چلا گیا تو ہم حال دو حال مچا دیتے ہیں کوئی ایک خبر چھپ جائے کوئی ایک ریڈیو پہ نیوز آ جائے شہر میں ایک بلڈنگ گر گئی پھر دیکھیے دنیا میں کیا حال حالات ہوتے ہیں لیکن جب اللہ ان الانسان لفی خسر کہتے ہم کہتے ہوگا کوئی ہوگی بات 1400 سال سے یہ آیت پکار دے رہی ہے دہائی دے رہی ہے لیکن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تو فرمایا انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو یہ ہے وہ سورت جس کو ہم شروع کر چکے۔ سب سے پہلا لفظ کیا دیکھا تھا؟ والعصر، زمانے کی قسم۔ واو یہاں قسمیہ ہے اور اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر چکے، باقی بات ابھی کروں گی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم کھائی کس کی؟ العصر، زمانے کی۔ مراد جہاں شہادت اور گواہی ہے تو والعصر کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ ذرا سا سمجھیے، بڑا ہی یونیک نقطہ۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کبھی پہلے آپ نے اس کے بارے میں غور کیا ہو، کیونکہ یہ سورت جب بھی پڑھی پڑھائی جاتی ہے نا تو ہمیشہ ہم آخری چار چیزوں پہ چلے جاتے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور یہ انسانوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو بالکل اس کے آخر پہ لے جاتے ہیں۔ تو یہاں ذرا سا نوٹ کر کے دیکھیے، اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ آسمان کی کھا دیتا، زمین کی کھا دیتا، سورج کی کھا دیتا، چاند کی کھاتا، اور قسمیں کھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ پیچھے کل بات اس پہ ہماری ہو گئی تھی کہ قسم کھا کر یہاں کوئی اس کو معتبر قرار دینا نہیں ہوتا، گواہ بنانا ہوتا ہے۔ اب جب کوئی چیز کسی کو بھی آپ گواہ بناتے ہیں تو گواہی کیسی ہوتی ہے؟ ذرا سا سوچیے، کسی معتبر کی ہوتی ہے۔ نمبر ایک لکھیے، گواہوں کا عادل ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گواہی کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ اویلیبل بھی ہو، جب اس کو طلب کیا جائے، جب اس کو بلایا جائے تو وہ فوراً وہاں آ کر گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں وقت کی بات کی، زمانے کی بات کی، گویا کہ ایک جہاں دیدہ بزرگ۔ اگر کسی جگہ ایک بچے کی گواہی دلانی ہو یا بڑے کی، تو کس کی گواہی کو لوگ زیادہ مانیں گے؟ گھر کے بچے کی؟ نہیں، بڑے کی، بزرگ کی، جو گھر کا، خاندان کا بڑا ہے۔ کسی شہر کی، کسی معتبر ہستی کی گواہی دلانی ہو یا اس کے برعکس کسی راجاتے ان نون، کسی چور ڈاکو لٹیرے کی دلوانی ہو، کس کی معتبر ہوگی؟ آف کورس باعزت کی، دیندار کی، کس شہر کے کسی بڑے کی، کسی مشہور شخص کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں والعصر کہہ کر زمانے کو گواہ بنایا۔ کون سا زمانہ؟ جو گزری ہوئی قوموں پہ گواہ ہے۔ یاد رکھیے، یہاں گواہ بہت مضبوط چنا ہے اللہ نے زمانے کو۔ کون سا زمانہ؟ وہ زمانہ جس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا فرشتوں کو، اور یہ وہ زمانہ ہے جس نے ہر قوم کو تباہ ہوتے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ والعصر کہہ کر پرانے دور کے سے لے کر آج تک کے زمانے کی بات کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت نوح کو 950 سال تبلیغ کرتے ہوئے جس نے دیکھا، اس کی قسم، والعصر۔ وہ زمانہ جس نے حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوتے 60-70 لوگوں کو دیکھا، اس کی قسم۔ یہ وہ زمانہ جس نے حابیل کا قتل دیکھا قابیل کے ہاتھوں، اس کی قسم۔ اور جس نے حضرت نوح کی کشتی کو کنارے پہ لگتے دیکھا، اس کی قسم۔ یہ وہ زمانہ جس نے ابراہیم کے ہاتھ سے بیٹے کی گردن پہ چھری چلتے دیکھی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس نے موسیٰ اور فرعون کے دور کی ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوششوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گلی گلی مکہ میں اور مکہ سے نکل کر طائف میں جاتے دیکھا۔ اگر ہم یہاں بھی رک جائیں کہ سورت الاثر مکی دور کی بالکل شروع کی سورت تھی، تو زمانہ ساز، آپ اردو میں ایک لفظ لکھتے ہیں زمانہ ساز، جہاں دیدہ، جہاں کیا ہوتا ہے؟ والعصر، زمانے کی قسم۔ ہم عموماً تجربات سے گزرے ہوئے لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے دنیا دیکھی ہے، یہ بال ہم نے دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ ایک انسان جتنے ایکسپیرینسز میں سے گزرتا ہے، ایک انسان جتنا زیادہ مختلف حالات میں سے گزر جاتا ہے، اتنا ہی اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، اتنی اس کی بات قابل یقین ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، کسی جھوٹے کی گواہی تو نہیں ڈالی جائے گی۔ اب یہاں ذرا سا رکھیے، اور ایک ایسا خوبصورت نقطہ جس کو اگر آپ میں سمجھ جائیں تو شاید پھر ہمیں واقعی یہ صورت آج ایسی سمجھ آ جائے کہ جو کبھی نہ آئی ہو۔ آپ دیکھیں کہ زمانے کی قسم، زمانے کو گواہ بنایا جا رہا ہے، اور کون گواہ ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا शुहदा अलन्नास। अल्लाह ने उम्मते मुस्लिमा को जो शरफ दिया, जो उम्मते मुस्लिमा की इज्जत और जो उसका मुकाम है दुनिया में, अल्लाह ने वही मुकाम यहाँ जमाने को दिया। और हदीस में आता है कि जमाने को बुरा ना कहो, अनद दहर। हदीस कुदसी है, यानी अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि जमाने को बुरा मत कहो क्योंकि मैं जमाना हूँ। आदम का बेटा जमाने को गाली देता है, जो कि असल में इनडायरेक्टली वो अल्लाह ताला की तरफ चली जाती है। तो अल्लाह ताला ने इधर एक बहुत बड़ी गवाही महसूस करवाई हम सबको कि तुम देखो तो सही कि अल्लाह ने तुम्हारे सर पर कितनी मजबूत गवाही खड़ी कर दी। वला सुरिनल इंसान न लफी खुसर। क्या पता चला कि जब जमाना इन सारी चीजों की कल क्यामत के दिन गवाहियां देगा तो उस दिन सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन बात यह है कि इंसान ने जब नहीं मानना होता ना, तो गवाह सामने खड़े हों इंसान जुटला देता। आपने कभी देखा चोरों को? इस दफा भी एक जगह हम किसी से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि कोई मुजरिम पहले नहीं मानता, फिर जब हम उसको खूब मारते हैं, उसको जूते लगाते हैं तो मान जाता, फिर वो भी मान जाता है जो हमने नहीं पूछा होता। इंसान गवाहों को झुटला सकता है, कल क्यामत के दिन इंसान कैसे झुटलाएगा जमीन पे खड़े हुए जिस जमीन पे गुनाह किए। माँ कद्दम व आसारहुम, हदीस से हमें पता चलता है, और सूरत यासीन और इसी तरह और भी आयात है, क्या पता चलता है कि जमीन के जिस टुकड़ों पे खड़े हुए हम कोई नेकी या गुनाह करते हैं, अल्लाह सुबहान तआला वहां हमारी मोहरें सब्त करवा देते हैं। और आपको पता है कि वो जो कहते हैं ना कि गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। आपकी मेरी जिंदगी का जब एक और साल कम होता है ना, तो जमाना हमें देख रहा होता है। आज से आपने जमाने को एक बहुत बड़ा बुजुर्ग सोचना है जिसकी आंखें आप पे लगी हुई है। घर में कुछ बुजुर्ग होते हैं, कोई सास, कोई माँ, कोई बड़ा, कोई बाप दादा, वो बड़ी खामोशी से आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आप कर क्या रही हैं। कोई बहुत हुड़बिला हो, चुलबुली लड़की है, कोई बहुत ही हाइपर है, तो हमेशा वो आपको कभी शायरों में कभी किनारियों में समझाते हैं, इट्स ओके, रिलैक्स, इतना नहीं हाइपर होते, अच्छा सही। आप खुद अपने बच्चों को दिन में कई बार हाथों के इशारे, ओके, इट्स ओके, कूल, काम, क्वाइट, इट्स ओके। ये जमाना हमारे अंदर जिंदगी के हर साल एक कमजोरी की लहर छोड़ जाता है कि गौर तो करो, तुम कल नहीं होगे। और आपको पता है कि जमाने को फलक पीर कहते हैं, फलक कहते हैं आसमान को, और पीर पारा या पीरू जो भी आप देखते हैं, यानी वाइस लिखे। इंसान का सबसे बड़ा वाइस और नासिख जमाना है। आपने ये जुमला सुना होगा कि वो बात जो उस्ताद ना सिखा सके, वो बात जो बच्चा माँ बाप की ना माने, वो उसको जमाना सिखा देता है। तो लिखिए, उस्ताद है आपका मेरा। एक 20 साल की लड़की और एक तजुर्बाकार 40 साल की औरत में फर्क होता है। तो जमाना इसकी गर्दिशों में कौमों के रूज और जवाल की दास्तानों की शक्ल में इबरत भी होती है, नसीहत भी होती है, वाज का असर भी होता है। और वक्त तो वो है कि जिसने सैकड़ों कौमों को उभरते देखा, कुव्वत पकड़ते देखा, और फिर जिल्लत के घड़ों में गिरते हुए भी देखा। इस जमाने के सामने हजारों हुकूमतें बनी और बिगड़ी। आपके पास जो यादों का पटारा होता है वो क्या है? यादें क्या है? जमाना, आप बचपन में यूं करती थी, ये नानी का घर था, हम यहाँ आते थे, यहाँ मामू थे या मामू के बच्चे थे, फिर ये हुआ, ये ताया का घर, ये चचा का घर, यादें हो जाती हैं। लिखिए, जमाना हमारी यादों में ढल जाता है। आज तक, यानी आप 2022 को अगर देखें तो बीसियों तहजीबें वजूद में आईं, उरूज को पहुंची, और फिर गल सड़कर मुतफन होकर गिलाजत का ढेर बन गई। अरब हा अरब इंसान आज तक पैदा हुए। आपको दुनिया की जब आबादी बताई जाती है कि मिसाल है कि 10 मिलियन है, तो आज है ना 2022 में बिलफर्ज दुनिया की आबादी 10 मिलियन है, तो क्यामत से लेके आज तक टोटल कितने मिलियन थे? वी कैंट इवन काउंट, इनफिनिट है। जमाने ने उन सबको देखा। कहते ना कि कैसे कैसे रुस्तम और सुहराब आए, कैसे शद्दाद और फिरौन आए, और पले बढ़े और फिर मट्टी में मट्टी बन गए। कितनों ने फतह के झंडे उठाए और कितनों को सरवरी मिली, कितनों ने खुद को जिल्ले इलाही कहलाया, कितनों ने अल्लाह के दीन को बदला, ये सब इस जमाने की चादर के अंदर गुम हो गए। अरब शायर था, उसका नाम था कुस, काफ सीन, कुस बिन साइदा। उसने बड़े खूबसूरत से अशार कहे हैं जिसमें वो कहता है, ऐन अलाबा, कहाँ है तुम्हारे बाप, वल अजदाद, और कहाँ है तुम्हारे दादे, यानी तुम्हारे बाप किधर गए, तुम्हारे परदादे दादे किधर गए, व ऐन अल मरीद, वो लोग जो बीमार थे कल तक किधर है? आप देखते हैं हमारे अपने प्यारों में कुछ लोग बहुत बीमार होते हैं ना, तो फिर ना भी चाहे ना तो दिल कर रहा होता है कि अब ये चले ही जाए, खाम खा बेचारे बोझ हैं, बहुओं पे बोझ है, ये है वो है। तो ऐनल मरीत व ऐनल आवाद, कहाँ है मरीजों की इयादत करने वाले? कभी आप भी अपनी सास की खिदमत करते करते थक चुकी थी, आपसे कुछ नहीं हो रहा था और आप कहते थे अल्लाह आप मुझे मजीद ना आजमाना, तो वो जो खिदमतें करने वाले थे आज वो किधर हैं? ऐनल फराइना, किधर हैं फराइन फिरौन व अब शद्दात, और शद्दात किधर हैं? वाइन अल मम्बना व शय्यदा, वो किधर हैं जिन्होंने इमारतें बनाई और चूनागढ़ बनाई? वो कहते हैं ना वकुन तफी कुन तुम फी बुरूज मुशय्यदा, तो शय्यद कहते हैं चूनागढ़ी हुई बिल्डिंग को, बड़ी मजबूत। और इसी तरह से मजीद बातें वो करके कहता है कि जमाना जीत जाता है और इंसान हार जाता है, इंसान को अपने माल का गर्रा होता है, इंसान अपने माँ बाप को अपने से कमतर समझने लगता है, अकल में, उनके तौर तरीकों में, उनके लाइफ स्टाइल में। और कुछ ऐसे आई ना मम्बगा, किधर है जिसने बगावत की? वह तगा, जिसने तुगयानी इख्तियार की, सरकश हुआ, ट्रांसग्रेस्ट, वह जमा फाउआ, वो किधर गए जिन्होंने माल जमा कर करके रखा और फिर गिनते ही रह गए? वह काला अनारा भुख मुलाला, और वो किधर है जिसने ये कहा था कि मैं तुम्हारा रब्बे आला हूं? तो आप देखते हैं कि अल्लाह ताला ने एक लफ्ज, देखिए पूरी आयत में वल असर, देखा जाए तो वाओ को तो हम हर्फ कहते हैं ना, कस्मिया हर्फ, अल असर के लफ्ज में अल्लाह ने आदम से लेकर नबी सल्लम तक की पूरी तारीख बयान कर दी। इसको कहते हैं तज़कीर बिअय्यामिल्लाह। शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देहलवी गुजर गए थे, तो उन्होंने कुरान की एक मुस्तकिल कह लीजिए कि कैटेगरी की कि कुछ आयतें ऐसी हैं जिसमें तज़कीर है, जिसके अंदर मतलब गुजरे हुए दिन, जिसको आप मेमोरियल डेज कह सकते हैं, क्योंकि हर कौम की तबाही एक मेमोरियल डे थी। तो अल्लाह ताला इन सारी चीजों को कहकर आगे देखिए इबाल असर की बात को जरा सा रैप अप करके आगे देखते हैं। इन नल इंसान लफी खुसर, वल असर जमाने की कसम, इन नल इंसान लफी खुसर, बेशक इंसान दर हकीकत बड़े खसारे में है। इन्ना देख लीजिए, चार ताकीदें आपको पीछे भी लिखाई थी, फिर अल इंसान में लफ्ज अल, फिर फी से पहले ला, आयत सामने है तो आप इस पे नजर डाल सकते हैं, और खुसरिन के नीचे जेर जो है ना डबल जेर, ये चार ताकीदें हैं, इंसान दर हकीकत बड़े खसारे में है। अल्लाह सुबहाना ताला इस आयत में आपको मुझे सबक क्या देते हैं कि तुम इस दुनिया में जो जी रहे हो, जो तुम्हें इस वक्त समझ आ रहा है कि तुम अपने आप को कोई बहुत बड़ा महसूस करते हो, तो जान लो कि तुम हो असल में नुकसान में। इन अल इंसान लफी खिसर, एक ऐसी दर्दनाक हकीकत, ट्रेजेडिक, यानी ये एक इंटरनेशनल ट्रेजेडी है, ये ह्यूमन ट्रेजेडी है और नाकाबले इनकार हकीकत है, यानी यू कैंट डिनाई दिस रियलिटी। आप कहते हैं साबित कीजिए, तो दुनिया में छोटे छोटे इसके चार छह लफ्ज बोल दीजिए, हम डिस्ट्रैक्शन या खसारा कहते हैं तबाही को, तो नागासाकी, हिरोशिमा, 9/11, चंद बिल्डिंगों का गिरना, आप इसी को सिर्फ कहते हैं? पाकिस्तान में एक जलजला आया, इसी तरह बालाकोट में एक जलजला आया, ये तो है। क्या आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली में कोई एक इंसान रिसेंटली फौत नहीं हुआ? इस कोरोना के इस दौर में, टाइम पीरियड में, क्या इंसान दुनिया से नहीं गए? तो इन अल इंसान लफी खुसर, क्या ए इंसान तेरी जिंदगी असल में खसारा है, हर दिन जो तू जीता है ये तुझे मौत के करीब कर देता है, ए इंसान जो तू खाता है वो भी खसारा, तेरी शादी खसारा, तेरी मंगनी खसारा, तेरा बच्चे का पैदा होना खसारा, क्योंकि हर वो चीज जो पैदा हुई, कुल्लू मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बी का जुल जलाली वल इकराम। मुझे एक ऐसी माँ से मिलने का इत्तफाक हुआ, इंतहाई मुहज्जब, इंतहाई डिसेंट सिस्टर, और जब पास बैठता है इंसान तो फिर जब अपना दिल खोलता है तो इंसान को पता चलता है कि दुनिया में कैसे कैसे सदमे हैं। तीन बच्चे और उनमें से एक पहली बड़ी बेटी को एन 16 साल की उम्र में एक ऐसी बीमारी डायग्नोज हुई कि जिसके बाद वो 6 साल से कुछ खा नहीं सकी, पूरी बॉडी अंदर से बंदे की हिल जाती है। वो उम्र जिस वक्त एक इंसान माँ बाप की नज़रों में होता है कि अब इसके हाथ पीले किए जाएं, और वो कहती है कि मैंने नियत की हुई थी कि मैंने 18 साल की उम्र में इसकी शादी कर देनी है, और 16 साल की उम्र में एक ऐसी बीमारी डायग्नोस हुई कि वो अभी तक उससे ना जानवर हो सकी, ना खा सकती है ना पी सकती है। जब बेटा दूसरा जरा सा बड़ा हुआ, यानी बेटा था दूसरे नंबर पे, वो भी किसी अच्छी फील्ड में गया, तो उसको एकदम कोई ऐसा शौक लगा तो उसको भी कैंसर डायग्नोज हो गया। तीसरा बच्चा जरा सा जब वो भी बड़ा हुआ तो उसको भी बीमारी। उसका एक ही सवाल था, व्हाई दिस हैपेंस टू मी, मेरी एक बच्ची, मेरा फिर दूसरा बच्चा, फिर मेरा तीसरा बच्चा। अब कभी कभी बंदे की ना जुबान गुंग हो जाती है। अब तो मैं आपको जो बात बता रही हूँ बड़े आराम से बताऊंगी, लेकिन जब उन्होंने मुझे कहा तो एक लम्हे के लिए मेरी भी जुबान गुंग होगी कि मैं क्या कहूँ, लेकिन अल्लाह ने दिल में डाला। मैंने कहा सिस्टर आपने 16 साल तक एक बेटी को तो इंजॉय किया ना, शी वॉज हेल्दी, शी वॉज नॉर्मल, और वो कह रही बहुत टैलेंटेड मेरी बेटी, तो 16 साल अल्लाह ने आपको एक मौका दिया, अगर ये देता ही ना अल्लाह आपको बच्ची, तो आपने कहना हाय मेरी बच्ची नहीं, हाय मेरे बच्चे नहीं। चलिए 25 साल की उम्र में एक बच्चा फौत होता है किसी का, इकलौता बेटा, सही मानते हैं, लेकिन 25 साल तक तो अल्लाह ने आपको एंजॉय कराया ना। कई ऐसे भी हैं जिनके होते ही नहीं है और उनको क्रेविंग भी बड़ी होती है, तो जो है उस पर शुक्र कीजिए, क्योंकि इन्नल इंसान लफी खुसर। अब आपको ये मैंने मिसाल दी, दुआ भी करती हूँ अल्लाह उनके सारे बच्चों को सेहतमंद कर दे, और अल्लाह कादिर है, वमा ज़ालिका अल्लाह भी अजीज। लेकिन यहां अगर गौर कीजिए, अगर ये खबर ऐसी होती, अब देखिए मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, अल्लाह करे मैं समझा पाऊं, अगर वो माँ, और उसी की बात इसलिए आगे ले रही हूँ कि उनके लिए सदका जारी है, वो मुझे कहती मेरी बेटी है, एक ही बेटी है, बड़ी टैलेंटेड है, मेरी वो बेटी 18 साल की हो रही है और मैं अब उसकी शादी कर रही हूँ, उसके बड़े अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, अब मैं पाकिस्तान जा रही हूँ उसकी शादी की तैयारियां करूंगी, क्योंकि एक ही बेटी है तो मैंने उसको जेवर भी बहुत डालना है। फिर इसी के साथ वो जिक्र करते, वैसे मैंने अपने बेटे के लिए भी एक लड़की देखी हुई और मेरा बेटा बहुत कामयाब है और 2 साल बाद उसका अब जॉब लग जाएगी। वो अपने तीनों बेटों की खुशियों का ही जिक्र करती है अगर मुझे, तो क्या फिर इन नल इंसान अलफी खुसर वाली बात उस पर फिट नहीं आती थी? वो उस पर भी फिट आती थी, लेकिन हमें दिखती नहीं है। किसी का जवान बच्चा बीमार हो जाए हम कहते हैं खसारा, किसी की कोठी जो है वो समझे बिक गई कहते हैं खसारा, लेकिन जब खुशियां, जब नेमतें, जब दुनिया की कामयाबियां दिखती हैं तो हमें वो खसारा नहीं दिखता। हो सकता है एक बच्ची की बीमारी का गम उस औरत को अल्लाह के जितना करीब ले आया, जितना उसको अल्लाह के साथ जोड़ दिया, ये फायदा उस बेटी के सदमे से बड़ा होता। अमूमन इंसान अपनी खुशियों में रब को भूल जाता है, पूरा ना भूले तो 10%, जितना ईमान कम होता है उतना ज्यादा होता है 15%, 20%। और आप इसको देख ले, खुशी के दिनों में नमाजें जो पढ़ी जाती है वो कैसी होती हैं, अगर पढ़ी भी जाती हैं तो ठीक है। तो होता क्या है कि हम दुनिया में जब नेमतों में बस रहे होते हैं ना, तो हमें उस वक्त वो खसारा नहीं दिखता, लेकिन असल में वो भी खसारा होता है। आप देखिए कि एक तो है कि किसी की दीवार गिर गई, और एक ये कि दीमक लग गई, ऊपर से बिल्कुल भी नीर है, दीमक भी अकलमंद है, वो ऊपर की तह नहीं छेड़ती, अंदर से खा जाती, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरी चौखट गिर जाएगी। तो अगर आज मैं बच भी गई मौत से, आज 18 साल की बच्ची बीमारी से बच भी गई, आज 20 साल का बेटा उसका कैंसर से बच भी गया, तो एंड पे क्या होगा? फिर भी जाना है, आज भी जाना, कल भी जाना, ये भी जाना, वो भी जाना। तो बात ये है कि ये जिंदगी दुख है। आपने नाम सुना होगा, एक बड़ा मारूफ किरदार है बुधा, उसके नाम पे कहते हैं कि बुधा ने कहा कि दुनिया या जिंदगी दुखा है। यानी गनीमत क्या है कि इंसान यहाँ दर्दमंद दिल के साथ और बहुत ही कॉन्टेंट फीलिंग्स के साथ जिए। ए अल्लाह, आपने जो देना है वो भी ठीक, जो नहीं देना वो भी ठीक, जो दे के आपने वापस ले लेना ना वही ठीक। दैट इज द अल्टीमेट रोड टू बी हैप्पी। हम अगर अल्लाह की रजा पे राजी नहीं होंगे तो हम दुखी ही होंगे। जमाना दिन रात आपको मुझे देखता है हम कैसे हैं। इर्द गिर्द जाकर देखिए, इस दुनिया में होता क्या है कि करोड़ों लोग बसते हैं, उन करोड़ों में से कई लाख लोग दिन भर जाकर मेहनत करते हैं, कमर तोड़ते हैं, फिर भी उनको पेट भर कर खाना नसीब नहीं होता, है कि नहीं? सारे कोठियों में तो नहीं रहते ना, कभी झुग्गियों में जाकर देखिए, कच्ची बस्तियों में देखिए, पहाड़ों के अंदर जाकर वो छोटे छोटे गार नुमा घरों को देखिए। फिर इसी तरह से आप देखिए कितने लोग हैं कि जो अपने बच्चों को और अपने प्यारों को एक दवा ना होने की वजह से मरता देखते हैं। कितने लोग हैं इस दुनिया में जिनको जिस्म भी छुपाने के मुताबिक कपड़ा नहीं मिलता, कितनों के पास सर छुपाने की जगह नहीं, कितने सदमे के इंसान बर्दाश्त करता है, कैसे दुख जान का लागू है। और सबसे बड़ा दुख आपको पता है औलाद का दुख है, कभी औलाद की मोहब्बत रुलाती है, कभी इंसान को माल की तमन्ना तड़पाती है, कभी नाकाम आरज़ुएं किसी के गले का हाल बन जाती हैं, और कभी कभी आपके जज्बात पूरे नहीं होते। अब जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, आपके लिए सुहाने रूह है, और अगर अल्लाह से ताल्लुक ना हो तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। अब ऐसे वक्तों में जब आप देखते हैं कि फुलां के पास तो ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, इनके पास दुख बहुत है, इनके पास तकलीफें बहुत हैं, और फिर भी बेचारे जी रहे हैं। आप कभी अपनी मासियों को देखा करें, आप कभी अपने ड्राइवरों को देखा करें, कभी हॉस्पिटल में जाकर उन बेचारों को देखा करें कि जो जाली दवाइयां खा खा कर और बीमार हो जाते हैं। अब उस वक्त आप सोचते हैं कि ये क्या है, शायद ये दुनिया इंसाफ पे मबनी नहीं है। नौजुबिल्ला एथियस लोगों के जुमले कहते हैं, इफ गॉड एग्जिस्ट सो वाई इज दिस गोइंग टू बी हैपन, अगर अल्लाह है तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत नेमते हैं, बहुत कुछ है, ना कभी बीमारी, ना परेशानी, ना कुछ। हमारी जाहरी अकल क्या कहती है कि ये जो पहली कैटेगरी है ये दुखी है, ये है खसारे में, ये है तकलीफ में, ये है वो जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, इनकी जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इट्स वेरी हार्ड टू सर्वाइव, और इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल में है। इसके बरक्स जो दूसरे लोग हैं, हम कहते हैं वो बड़ी खुशी में है, वो बड़े मजे में है, वो कोई सियासतदान हो सकता है, वो कोई कुछ हो सकता है, वो कोई कुछ हो सकता है। लेकिन हकीकत क्या है कि अल्लाह का कुरान क्या कहता है, लकद खलक नल इंसान नफी कबत, बेशक हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया। कबत अरबी जुबान में जिगर को कहते हैं, कलेजी लिवर को कहते हैं, और आपको पता है कि बॉडी में जिगर का बहुत अहम मुकाम है, अगर जिगर फेल हो जाए तो इंसान जी नहीं सकता। क्या पता चला कि इंसान इस दुनिया में जब भेजा जाता है तो वो मुशक्कत में आता है। अगर डिलीवरी के वक्त पे माँ को पेन होते हैं तो बच्चे को भी होते हैं, अगर माँ उस वक्त स्ट्रगल में होती है तो अगर बच्चा स्ट्रगल ना करे तो फिर भी डिलीवर नहीं होगा। तो आप लिखिए खुसराने इंसानी की इब्तदाई मंजिल क्या है, यानी खुसारा जो अल्लाह ने कहा है ना, इन्नल इंसान लफी खुसर, तो दुनिया में इंसान का आना और इन मशक्कतों में पड़ना, ये सारा खसारा नहीं, ये भी सिर्फ इस रोड टू खसारा है। जैसे आप किसी तरफ चल पड़ते हैं तो आप रास्ते की तरफ पहुंच जाते हो, और उसके बाद फिर इंसान इस दुनिया से जब जाता है, निजा की सख्तियां, वो जब इंसान की जान भी नहीं निकलती, सारी जिंदगी सदमे, तकलीफें, परेशानियां, कभी बच्चे का गम, कभी माल का गम, कभी कुछ करते करते, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, है इंसान बेशक तू लम्हा लम्हा थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हुए अपने रब की तरफ जा रहा है, तू एक दिन उसे मुलाकात कर लेगा, उस वक्त जब एक इंसान अल्लाह के पास पहुंचेगा, और अगर उस वक्त ये बात खुल गई कि इन्नल इंसान लफी खुसर, तो उस वक्त हसरत का जो ठिकाना होगा वो इंसान देख नहीं सकता। ये था वो एहसास जो सहाबे रसूल में था। हम दुनिया की खुशियां और गम इसमें उलझे रहते हैं। अबू बकर सिद्दीक कहा करते थे, काश मैं मिट्टी हो जाता। हजरत आयशा सिद्दीका के बारे में आता है, वो कहती थी काश तू चिड़िया होती, दरख्तों पे इधर से उधर जाती, भदकती भदकती और तू मर जाती, तेरा हिसाब ना होता। हजरत उमर एक मौके पे कहते हैं सूखी घास का तिनका उठा कर के, उमर कभी तो ये तिनका ही होता। यानी ये जो मुहासबे का एहसास है ना, ये इंसान की जिंदगी को एक नया रुख देता है। हम जितना खुशियों में होते हैं उतना रब की बात को भूल जाते हैं, मानिए ना मानिए हम भूल जाते हैं। हमें रब याद उस वक्त आता है जब हम खाली हाथ होते हैं। ये ऐसे जैसे बच्चा खेल रहा है, खेल रहा है, माँ बुला रही है खाना खा लो, नहीं आ रहा, माँ कहती है सो जाओ, सो नहीं रहा, माँ कहती है उठो स्कूल जाना है, और बच्चा नहीं जाता, तो एकदम फिर माँ आकर उसका खिलौना उठाती है और उस खिलौने को उठा के ऊपर के रखती है या उसको तोड़ देती है। उसके बाद क्या होगा, फिर उस बच्चे को एहसास होता है कि मैंने अपनी माँ को दुखी कर दिया, मैंने अपनी माँ को सही तरह से समझा नहीं है। अब वो जो दुख और वो जो तकलीफ होती है ना, इसके ऊपर फिर वो गौर करता है, फिर माँ से माफी मांगता है, फिर प्यार करता है, और माँ फिर उसको माफ कर देती है। बिल्कुल दुख और सुख दोनों खसारा है। यानी ये सारी बातों का एंड अगर आपको दूं ना इस जुमले में, कि दुख और सुख बराबर है। हमारी नजर कमजोर है, हमें दुख दुख लगता है और सुख हमें आजमाइश नहीं लगती, हालांकि इन्नल इंसान लफी खुसर। आप देखिए एक माँ की दो बेटियां, एक अपने घर बड़ी सुखी है, उसका सब कुछ है, लेकिन जब इतना कुछ मिला तो उसके बाद फिर वो नमाज रोज़ा भी ना रहा, बच्चा हो गया तो हो सकता और भी ना रहा। ससुराल का माहौल थोड़ा सा लिबरल हुआ तो उसने बाल भी खोल कर बेपर्दा बाहर आना शुरू कर दिया। अब जब ये सारा हुआ, लेकिन सच है कि माँ उसको देखती है उसके हाथों में सोने की चूड़ियां हैं, अब ईद पे उसके मियाँ ने उसको डायमंड की रिंग लेकर दी है, ये कर दिया वो कर दिया ये कर दिया। इसके बरक्स एक दूसरी बेटी भी है माँ की, जिसके पास इनमें से कोई एक भी चीज नहीं है, या थी तो अल्लाह ने छीन ली, तलाक हो गई, बेवगी हो गई, या कोई और भी वजह हो सकती है, लेकिन इसी दुख और तकलीफ में उसका रब से ताल्लुक जुड़ गया। मुझे बताइए कि अकेले में बैठी वो माँ किस बच्ची के बारे में ज्यादा मुतफक्किर है? पहली जो सोने चांदियों में खेल रही है और बस दीन में कमजोर हो रही है दिन ब दिन, दूसरी वो बच्ची जिसको ये सब कुछ नहीं मिला लेकिन अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की किताब का कुर्ब, मकसद मिल गया। एक बच्ची के घर में चार बच्चे हैं, दूसरे बच्ची का एक भी बच्चा नहीं। माँ उठते बैठते क्या कहेगी, अल्लाह इसको बच्चा दे दे, अल्लाह इसको बच्चा दे दे। हालांकि माँ देख रही है कि चार बच्चों वाली तो पता नहीं पांच नमाजें भी ठीक पढ़ रही है कि नहीं, जबकि जिसके फारिग वक्त है ना सिर्फ ये कि वो खुद पढ़ रही है बल्कि दूसरों को भी नमाज पढ़ना सिखा रही है। हमारी नजर में नंबर टू ज्यादा बड़ी तकलीफ में है। अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान खुसर में है, अल्लाह के यहाँ खुशी और गम ये सब कुछ बराबर है। असल बात यह है कि हम देखें कि ये कैसे होगा। आप देखिए, कसम से बात शुरू हुई, ताकीद, फिर इन्ना से बात शुरू हुई, फिर उसके बाद अल इंसान। लफ्ज को जरा सा खोल के देखिए ना, लफ्ज है इंसान, उर्दू में भी हम बोलते हैं अपने हिसाब से हमारे चलता है। तो वल असर में जब हमने देखा, पीछे आपको बताया था कि जमाने के लिए लफ्ज दहर है, असर है, कर्न है, हुक्बा है, रईबल ममनून है, सारों का फर्क भी आपको बता दिया था।